बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़किया बिल्कुरान प्रोग्राम के इस सिलसिले में हम उन सिफ़ात का मुताला कर रहे हैं जो कुरान मजीद से मालूम होता है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर देखना चाहते हैं। उनमें से हमने काफ़ी मालूमात जो हैं, सिफ़ात जो हैं, उनका मुताला कर लिया है। आज हम जिस सिफ़त का मुताला करेंगे उसके लिए मैंने अरबी ज़ुबान से ही एक लफ्ज़ चुना है। कुरान मजीद ने इसको लफ्ज़ों में बयान किया है, नाम लेकर बयान नहीं किया, तो मैंने इसका नाम गैर जाहिल रखा है। यानी मोमिन पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, वो गैर जाहिल होता है। और लेकिन ज़ाहिर है कि हम इस वस पर पूरे नहीं उतरते। जाहिल का मतलब अरबी ज़ुबान में दो पहलू से इसको लिया जाता है, एक जज्बाती के मानी में और दूसरे बेइल्म के मानी में। बुनियादी इल्म हर मोमिन के पास होता है। इल्म से यहाँ मुराद इस दुनिया की हकीकत के बारे में नॉलेज है, उसका इदराक है, उसकी समझ है, उसकी बसीरत है। और जज्बाती के मानी ये हैं कि आदमी अपनी तमन्नाओं का असीर नहीं होता, अपने गुस्से, अपनी नफ़रत, अपने जज्बात, अपनी बेहंगम किस्म की तमन्नाओं के हवाले नहीं होता, बल्कि नहायत नपातुला होता है। बेइल्मी के पहलू से हम कह सकते हैं कि ये तवहम का शिकार नहीं होता, वहम परस्त नहीं होता, सुनी सुनाई बातें, सुने सुनाए तसव्वुरात, कहानियाँ, लोग दास्तानें। और नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि एक ज़माना वो आएगा कि जब लोग कुरान और सुन्नत की बजाय कहानियों पर दीन की का मदार रखेंगे। तो ये सारे बेइल्मी की अलामतें हैं। यानी हम वहम, गुमान, जन जिसको कहते हैं अरबी ज़ुबान में, वहम, जन, गुमान, शक व शुबे, कहानियाँ, इस तरह की चीज़ों के पीछे मोमिन नहीं लगता। मोमिन पक्की साबितशुदा यकीनी बातों की तरफ जाता है। और पूरा कुरान मजीद अगर आप पढ़ें तो ये मज़मून बहुत स्ट्रांगली अल्लाह ताला ने उठाया है और बयान किया है कि तुम सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हो, जन पे अमल करते हो, हक को छोड़ रहे हो और उन बातों की तरफ जा रहे हो जिसका कोई सबूत नहीं है। और इसके बाद के अब कुरान मजीद जैसा सबूत आ गया है। दूसरी तरफ जज्बात होते हैं, इसमें अना है, इसमें तकब्बुर है, इसमें नफ़रत है, इसमें गुस्सा है, इसमें तमन्नाएं और ख्वाहिशें हैं। तो इन सारी चीज़ों का असीर जो हो जाता है, इनके पीछे जो लग जाता है, वो भी जाहिल होता है। तो अरबों के यहाँ जैसे अबू जहल को जहल कहा जाता है, तो वो उसका कोई नाम का बिगाड़ना नहीं था, उनके लिहाज से ये बड़ा तारीफ़ी जुमला था, क्योंकि ये शायर उनके कहते थे कि न जहलु फौकल जाहिलीना, कि हम सारे ही जाहिलों से बढ़कर जाहिल हैं। यानी अपनी कौमी अहमियत, अपनी कौम, अपने तअस्सुबात, अपने कबीले के लिए जान दे देना, छोटी छोटी बातों पर जिनमें जिनकी कबीले के मुताबिक हिफाजत होनी चाहिए उसके लिए जान देने को तैयार हो जाना, तलवार उठा लेना, ये सब कुछ क्या था? ये जाहिलियत थी। तो इसको हमियतुल जाहिलिया भी कुरान ने कहा है। तो जज्बाती होना और बेइल्म होना, ये असल में दोनों, अगर आप हकीकत में देखें तो अरबों ने ऐसे ही इसको एक लफ्ज़ में बयान नहीं किया। जब आदमी जज्बात का शिकार होता है तो इल्म का इनकार कर रहा होता है, उसको बात समझाना चाहे वो सुनने को तैयार नहीं होता, तो उसकी हालत वही होती है जो बेइल्म आदमी की होती है। तो ये गैर चाहे मोमिन इन दोनों नक्श से पाक होता है, वो जज्बात में भी नहायत नपातुला और इल्म भी उसके पास। इस कम अज़ कम इस इल्म का मतलब यहाँ ये नहीं है कि उसे साइंस की, एस्ट्रोनॉमी की समझ हो, वो कायनात के कॉस्मोस जो है उसके अंदर सितारे कहाँ हैं, प्लैनेट्स कहाँ हैं और उनकी हरकतें क्यों हो रही हैं और उसमें ग्रेविटी का लॉ कैसे चलता है, इसकी उसको ज़रूरत नहीं है यहाँ जिस जहालत की बात हो रही है, बल्कि उस अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है या उस ओपिनियन की या उस फ्रेम ऑफ माइंड की बात हो रही है जो इस कायनात को देखने का जाविया हमें अता करता है। इस पहलू से जाहिल नहीं होना चाहिए आदमी को। अगर इस पहलू से जाहिल हो तो बड़े से बड़ा साइंसदान भी जाहिल नजर आता है, और अगर उसके पास साइंस का इल्म ना भी हो तो वो बहुत सैन, बहुत समझदार, बहुत बसीरत वाला, बहुत नपतुला नज़र आएगा। तो एक मोची जुलाहा, ये सारे पेशे काबिल कदर हैं, लेकिन चूंकि हमारे मुआशरे में ये लोग पढ़े हुए नहीं होते तो इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ, ये लोग भी अपने अनपढ़ होने के बावजूद इस गैर जाहिल के टाइटल के नीचे नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो जाहिल नहीं होते, वो गैर जाहिल होते हैं, यानी उनको हर चीज़ की समझ होती है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तो ये गैर जाहिल, अब कुरान मजीद ने इसको जिस तरह से बयान किया है मैं उसको खोलने की कोशिश करता हूँ। ये सूरा बनी इसराइल है, इसकी 36 वर्ष में फरमाया गया है कि वला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म, उन चीज़ों के पैरवी ना किया करो, उन चीज़ों के दर पे ना हुआ करो, उन चीज़ों के पीछे ना लगा करो, उनके ऊपर अपनी इकदाम की बुनियाद ना रखा करो, उनके ऊपर अपने रवैयों की बुनियाद ना रखा करो जिनका तुम्हारे पास सबूत नहीं है। इल्म अरबी ज़ुबान में कुरान मजीद के ज़माने में ख़ास तौर से पक्के साबितशुदा बात के लिए भी इस्तेमाल होता था। ठीक है, वला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म, उन चीज़ों के दर पे ना हो, उन चीज़ों के ऊपर मदार ना रखो अपनी बातों का, अपनी ओपिनियंस का, अपने रवैयों का, अपने मामलात का, अपने लेन देन का, जिसमें तुम्हारे पास इल्म ना हो, जिसमें तुम्हारे पास सबूत ना हो। क्यों? फरमाया कि इन समा वल बसर वल फवात कुल्लुन उलाई का कान अनहु मसूला, क्योंकि कान, आंखें और दिल, इन सब से पूछा जाना है। अब देखिए इन तीनों का काम क्या है मोमिन के लिए, कि ये तीनों के तीनों उन बातों पर एतबार करें जो सबूत वाली हैं, पक्की हैं, मानी हुई हैं, यकीनी हैं। अगर कान ने ऐसी बात सुनी जो कच्ची है, मुजरिम हो जाएगा। आंखों ने ऐसा सीन देखा जो गलत है, साबितशुदा नहीं है, वो मुजरिम हो जाएगी। और दिल ने ऐसी राय बना ली, ऐसी ओपिनियन बना ली जिसका सबूत नहीं है, तो वो भी मुजरिम हो जाएगा। इन सब से पूछा जाना है। अब ये मोमिन की तस्वीर है। मोमिन कच्ची पक्की बातों के पीछे नहीं भागता, झूठी बातों के पीछे नहीं भागता, सुनी सुनाई बातों के पीछे नहीं भागता। मोमिन कभी अपनी ओपिनियन सुनी सुनाई बात पर उस्तवार नहीं करता, वो हर चीज़ सिर्फ उसी पर इकदाम करता है, उसी पर राय बनाता है, उसी पर गुस्से होता है, उसी पर दुखी होता है, उसी पर तड़पता है, उसी पर जो साबितशुदा हो। तो अगर हम सारे रवैये को देख लें, गुस्सा आ जाएगा हम, ओ कोई आके भाई हमारा ऐसी बात उड़ा देगा, हमें गुस्सा आ जाएगा। कोई आकर हमें कह देगा, मसलन कोई अपना दुख सुना रहा है और हमें किसी बात से लगा कि ये झूठ बोल रहा है, तो हम अपने दिल ही दिल में ख्याल कर लेते हैं कि ये झूठा है। तो ये बात कौन सी है? सबूत के बगैर है, हमें नहीं पता झूठा है कि सच्चा है। हो सकता है वो जुमला जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि वो झूठा है, किसी और वजह से निकला हो। तो हम अपने गुमान को, अपने एक राय को जिसका सबूत नहीं होता, हम उसके ऊपर पक्के जम जाते हैं और पूरा रवैया तब्दील कर लेते हैं। खानदानों के खानदान उजड़ जाते हैं इसी तरह की गुमानों की वजह से। तो जितने भी गुमान हैं, गुमान कई किस्म के होते हैं, वो ओपिनियन जो बड़ी सोच समझ के बनाई गई हो लेकिन सबूत कोई ना हो, वो चुगली और गीबत जो आपने सुन ली लेकिन उसकी तहकीक नहीं की और सुनने के बाद आपने राय बना ली, वो आपकी, आप मुजरम हो जाएंगे। आपके कान भी मुजरम हैं, आपके दिल भी मुजरम है कि आपने ओपिनियन भी बना ली। आपका भाई आया, उसने एक बात सुनाई, पता नहीं वो किस, उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठीक नहीं थी, उसने जिस तरह से वाक्य देखा है वो सही था कि नहीं, पूरे बात को समझता है, उसकी बैकग्राउंड से वाकिफ है या नहीं, आया और उसने आके आपसे चुगली की और आपने जिसके बारे में चुगली की गई उसके बारे में राय बना ली बगैर सबूत के, एक भाई के सिर्फ कहने पर, उसकी वो सच्चा होने के बावजूद गलत हो सकती है उसकी बात, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है मामले को समझना, उसने भी गुस्से में लिया हो सकता है बात को, जबकि बात गुस्से वाली ना हो। तो हम इस तरह से पूरी बात को सुनने के बाद एक ओपिनियन फटाफट बनाते हैं, वो ओपिनियन क्या होती है? वो गुमान होती है, उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। उसकी बुनियाद पर हम अपने रिश्ते तोड़ देते हैं, अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं, जाके लड़ना शुरू कर देते हैं। तो कुरान मजीद ये कह रहा है कि हमें ना कोई इकदाम करना है, ना कोई ओपिनियन बनानी है, ना कोई रवैया तब्दील करना है, ना कुछ लेन देन में तब्दीली करनी है, जब तक के हमारे पास सबूत ना हो, जब तक के हमारे पास सबूत ना हो। जिस दिन हम, खास तौर से मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ, चलो उर्दूदान तबका जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, अगर हम सिर्फ इतनी तब्दीली कर लें अपने अंदर, यानी जो हमने 16, 17, 18 सिफात पढ़ी हैं उनमें से सिर्फ ये एक सिफत अपना लें, तो हैरत अंगेज तब्दीली आ जाएगी। यानी हम ऐसी कौम बन जाएंगे कि साइंसदान भी हैरान रह जाएंगे कि ये कैसी कौम है, वो सुनी सुनाई बातों पे हम मानते ही नहीं हैं, बिला सबूत किसी चीज़ का इकरार नहीं करते हैं, बिला सबूत किसी बात के ऊपर इकदाम नहीं करते हैं, बिला सबूत किसी के खिलाफ राय नहीं बनाते हैं, बिला सबूत किसी मुजरिम को सजा नहीं देते हैं। तो जो अदालत काम करती है वो हर मोमिन काम करता है, वो कहता है सबूत होना चाहिए। सबूत नहीं है तो मेरी राय में कोई तब्दीली नहीं है, सबूत नहीं है तो मेरा कोई इकदाम नहीं है। तो वो डरता है क्योंकि उसके कानों और उसकी आंखों और उसके दिल से कल पूछा जाना है कि तुमने अपने भाई के बारे में राय बनाई थी, सबूत था? तुमने अपने भाई के बारे में तबसरा कर दिया था, कोई सबूत था? तुमने अपने भाई के बारे में ये मंजर देखा, उसको छुप कर गुमान पैदा हुआ कि वो मेरे बारे में बातें कर रहा है, और आपने छुप कर उसको देखना चाहा कि क्या बातें कर रहा है, क्या सुनना चाहा, क्या कह रहा है, तो ये जुर्म होता है। आगे फरमाया, ये सूरह अल अनाम है, इन तुति अक्सर मन फिल्लर्स युदिल्लू का अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊना इल्लज़न व इन्हुम इल्ला यखरुसून। तुम अगर लोगों में से अक्सरियत की बात मानने लगो जो ज़मीन पर हैं, तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी आरा की, अपने गुमानों की, अपनी ओपिनियंस की पैरवी करते हैं, हालांकि वो सिर्फ अटकल के तीर चला रहे हैं। ये कदीम ज़माने में जब कुरान उतरा तो बहुत मुख्तलिफ इसकी रेंज या इसकी पहुँच, इस मानी के अंदर जितने लोग आते थे वो बहुत मुख्तसर थे, क्योंकि वो दो चार नज़रियात थे उस वक्त। अब भी ये तबसरा इतना ही वैलिड है तमाम फ़लसफ़ियों पर, तमाम साइंसदानों पर, तमाम अहले इल्म पर जो सबूत के बग़ैर बात करते हैं। मसलन साइंसदानों का एक बड़ा तबका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो बड़े पते से बात करते हैं, सबूत के साथ बात करते हैं। इनसे मज़हब के बारे में बात करें तो बिला सबूत बात करना शुरू कर देते हैं। यानी कोई एक खालिस जो खुदा की किताब है उसका मुताला नहीं किया होता और मज़हब पर तबसरे हो रहे होते हैं। और फिर इस कायनात के बारे में जो कुछ भी ओपिनियन इंसान बना सकता है वो हमेशा जन रहेगा, हकीकत नहीं हो सकती। ये बात मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, अपने मुताले की नाकसी से ही उसकी रोशनी में कह रहा हूँ कि आइंस्टाइन से लेकर, न्यूटन से लेकर, आइंस्टाइन से लेकर आज तक जितने बड़े बड़े साइंसदान पैदा हुए हैं सबकी ओपिनियन जन होती है। क्यों? क्योंकि किसी के पास मुकम्मल इल्म नहीं है। एक फिनोमिना हमें नजर आ रहा होता है कि ऐसे हो रहा है और न्यूटन उसकी एक्सप्लेनेशन दे देता है, थोड़े अरसे के बाद मालूमात और होती हैं तो आइंस्टाइन एक और एक्सप्लेनेशन दे देता है, वो भी जन था, ये भी जन है। आइंस्टाइन के बाद बहुत सारी मालूमात तब्दील होती हैं तो नील बोहर एक और नज़रिया दे देता है। यूँ चलते चलते आप देखिए कि ये जन साबित होता चला जाता है। और वजह क्या है? वजह यह है कि मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दूंगा कि हमने तो इस ज़मीन से बाहर निकल कर भी इसको नहीं देखा है कि ये बाहर से कैसे लगती है, और फिर कायनात से बाहर निकल कर नहीं देखा कि बाहर से कुछ चीज़ें आ रही हैं, इसके अंदर जा रही हैं, क्या हो रहा है। हम तो इसके एक छोटे से गोशे में, जिसकी वसत का अंदाज़ा साइंसदानों को हमसे ज़्यादा है, उसके एक छोटे से गोशे में कहीं एक ज़र्रे के ऊपर, उनके अपने अल्फाज में कि सहरा पर जैसे रेत के ज़र्रे होते हैं तो ज़मीन उन ज़र्रों की तरह की एक चीज़ है, तो उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं और क्या कह रहे हैं, पूरी कायनात के बारे में तबसरा कर रहे होते हैं कि इस कायनात का कोई खुदा नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है, ये सारा कुछ जन है। तो फरमाया कि ज़मीन वाले जितने भी हैं अगर वो कुरान से बात नहीं कर रहे हैं तो उनके पास सिर्फ़ ज़न है। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरा इल्म नहीं है। अभी थोड़े से हकीर से इंसान की शुरू से ये खामी रही है, खाओ वो क्योंकि वो हमारे ही भाई हैं, साइंसदान भी कोई अजनबी लोग नहीं हैं, तो जिस तरह से हम छोटे से इल्म पर पता नहीं फूले नहीं समाते, उसी तरह वो भी इंसान हैं तो वो भी फूले नहीं समाते, और जब फूले नहीं समाते तो वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। तो मुझे फिरौन की और बात और साइंसदानों की बात बिल्कुल एक जैसी लगती है कि हमने इतनी कायनात एक्सप्लोर कर ली है, हमें तो खुदा कहीं नज़र नहीं आया। उसने अपने ज़माने के लिहाज से कहा था कि मैंने इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाकर स्तून बनाकर उसमें झांक लिया है, मुझे तो खुदा नज़र नहीं आया। तो ये जो हमान और फिरौन की जो नफ्सियात थी और आज के जो इंसानों की नफ्सियात है एक जैसी है। तो इसलिए इंसान ऐसा करते रहेंगे। हम मोमिनीन का काम ये है कि हम मोहब्बत के साथ अपनाइत के साथ उनके जुनून में से उनको निकालना है। तो कायनात के बारे में सिर्फ कौन बता सकता है जिसका इल्म कामिल हो, और वो सिर्फ खुदा की ज़ात है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो उसी ने बताना है कि हकीकत क्या है और जन क्या है। तो फरमाया कि जन की पैरवी कर रहे हैं, और ये सिर्फ तुक्के होते हैं, पूरी कायनात की एक्सप्लेनेशन कोई नहीं कर सकता क्योंकि हमने पूरी कायनात देखी नहीं है। और मैं ये एक जुमला बोला करता हूँ कि साइंसदान सारे इकट्ठे होकर एक दिमाग नहीं बन सकते, और तमाम साइंसदान जितना हमारे दिमाग की लिमिट है सारी मालूमात उसमें नहीं रख सकते, कि उसको केमिस्ट्री का ही पता हो, उसको फिजिक्स का ही पता हो, उसको बायोलॉजी का भी, उसको एस्ट्रोनॉमी का भी, और जितनी भी चीज़ें दुनिया में जितनी मालूमात हैं, यानी इस वक्त भी साइंस की तमाम मालूमात एक आदमी उसका एक्सपर्ट नहीं हो सकता। और जब वो ओपिनियन कॉइन करता है तो हो सकता है कि 10 अहम बातों को छोड़कर ओपिनियन बना ले, तो उसकी ओपिनियन सिर्फ एक जन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो साइंसदानों को मैं कोई उनको निगेट नहीं करना चाहता, उनकी बड़ी खिदमत हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन चूंकि वो इंसान हैं तो जैसे मैं अपने ऊपर कयास कर सकता हूँ कि क्या कुरान मजीद पढ़ पढ़ के 20 साल गुजार दिए हैं, लेकिन अभी भी कई आयतें उसकी जहन में नहीं रहती, राय देते हुए बाद में ख्याल आता है। अभी ये जो सिलसिला चलाया है इसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ये बात भी कहनी चाहिए थी, ये बात भी कहनी चाहिए थी। तो इस तरह से ये इंसान के पास जो सलाहियत है उसके मुताबिक उसने चलना है। तो उसके पास सवाए जन के, जन को एक जरा अच्छी तरह समझ लीजिए, जन का मतलब होता है राय, ठीक है, और राय यानी ख्याल, राय, सोच, ये सारे अल्फाज इल्म का उलट होते हैं। इल्म कुरान मजीद में उस चीज को कहते हैं जो पक्का, यकीनी, कतई, इसलिए मज़हब के अंदर भी यकीनी चीज़ों पर बुनियाद रखी जाती है, जन के ऊपर बुनियाद नहीं रखी जाती। तो यकीनी चीज़ें ये, यानी मैंने एक सोचा, गौर किया, गौर करने के बाद एक बात मेरे जहन में आई कि ये कायनात तो इस तरह से चल रही है, तो बस ये एक राय है, मैंने उसके ऊपर जितना भी सबूत फराहम कर लिया है, जितना भी डाटा मेरे पास है, वो फिर मेरी इंटरप्रिटेशन है, वो फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो फिर मेरा देखना है। और मैं पूरी कायनात को पूरी तसल्ली से नहीं देख सका हूँ, पूरी कायनात की हर हर मालूमात को मेरे पास जखीरा नहीं कर सका हूँ, इसलिए वो जितनी चाहे डाटा के ऊपर बेस करती हो, जितनी चाहे एम्पेरिकल डाटा उसके पीछे हो, वो बहरहाल जन होगा। ममा या तब अक्सर हम जन्न इन जन्न लायुग्नि मिनल हक्की शैया। अब इसमें यह बताया गया है कि जो मोमिन है वो जुनून के पीछे नहीं जाता, गुमानों के पीछे, आरा के पीछे नहीं जाता, जज्बात के पीछे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जो महज राय है, महज ख्याल है, जो मैंने बैठे ही बैठे बना लिया है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फैसिनेट कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर ली है, लेकिन चूँकि वो इंसान की काविश है, वो जन है। अब इस जन का मुकाबला अगर हक से किया जाए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन जन ला युगनी मिनल हक्की शैया, हक के मुकाबले में गुमान काम नहीं आ सकता। हक रियल हकीकत या रियलिटी है जो अपनी असल में मौजूद है। मसलन अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अल्लाह ताला खैर करे हमारी निगाह कमज़ोर हो जाए तो हमें ये दीवार नज़र ना आए तो हम टकरा के गिर जाएंगे, तो जो हमें नज़र नहीं आ रही थी वो हमारी जन था, और ये जो दीवार है ये हकीकत है, इससे हम टकरा जाते हैं। इस तरह से जन हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता, यानी मैंने ख्याल कर लिया कि कायनात मौजूद नहीं है, खुदा मौजूद नहीं है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, खुदा भी मौजूद रहेगा, कायनात भी मौजूद रहेगी, और मुझे और आपको एक दिन उसका वास्ता हो जाएगा, और जब वास्ता होगा तो उस वक्त हम कहेंगे ओहो मैं तो कुछ और सोच रहा था। तो ये यानी मैं जितनी मर्जी जुनून तराश लूँ, जितनी मर्जी फिलॉसफी बना लूँ, जितनी मर्जी मैं अपनी ओपिनियन बनाकर ढेर लगा लूँ कि खुदा नहीं है, आखिरत नहीं होनी है, तो इससे हकीकत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कबूतर अगर आंख बंद कर ले तो बिल्ली ख़त्म नहीं हो जाती, वो उसको पकड़ कर खा जाती है। तो बिल्ली का होना हकीकत था और कबूतर का आंखें बंद कर लेना जन की तरफ चले जाना है। तो जन जो है वो मोमिन हमेशा जुनून से बचता है, वो पक्की सच्ची बातों की तरफ जाता है, और पक्की सच्ची बातों में जाहिर है कि वहाँ से बात ली जाएगी जहाँ जन ना हो बल्कि हकीकत वाज तौर पर वहाँ हमें हासिल हो सकती हो, और वो सिर्फ खुदा की ज़ात है। अब अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिन अज़्ज़न, ए मोमिनों तुम जन से बहुत बचा करो। सारे जितने जन मैंने बयान किए हैं, भाई ने आकर बात की तो मेरे दिल में ख्याल हुआ ये इसलिए आया है, वो जन है। फलसफियों की तमाम आरा जन है, साइंसदानों की तमाम आरा जन है, जो कायनात की ओवरऑल वो बात करते हैं। एक है कि ये ग्रेविटी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, ये प्लैनेट्स वहाँ मौजूद है कि नहीं मौजूद हैं, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो ओवरऑल वर्ल्ड व्यू निकालते हैं वो अपने डाटा से कि मसलन इस कायनात का खुदा नहीं है, यह खुद ब खुद बिग बैंग के बाद वजूद में आई है, ये सारा कुछ जन है। क्यों? क्योंकि किसी ने बिग बैंग के ऊपर पीछे मौजूद कुवतों को नहीं देखा, ना देख सकता है, तो ये जन है। तो फरमाया कि इस तरह के जन जो आ रहा है, जो सिर्फ हाइपोथेसिस टाइप चीज़ें होती हैं जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, और प्रूफ होने के बाद भी मैं एक बात यहाँ अर्ज कर दूँ कि मसलन बिग बैंग हुआ और कायनात बन गई, तो इसमें कैसे पता चला कि पीछे खुदा नहीं है? यानी अगर ये कंप्यूटर मेरे सामने चल रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि इसके पीछे वो इंजीनियर नहीं है जिसने इसको डिज़ाइन किया है, वो पीछे है इसके एक एक पुर्जे में उसका काम, लेकिन अब यह खुद ही चलता है, इंजीनियर के बगैर चलता है। तो इसी तरह से बिग बैंग इंजीनियर के बगैर हुआ है, तो उसका इंजीनियर का इनकार करना नहीं बनता है। तो जितनी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे पास वाज़े सबूत नहीं होते, सिर्फ हमारी एक इंटरप्रटेशन होती है, तो वो राय है। हर इंटरप्रटेशन खा वो डाटा की हो खा वो टेक्स्ट की हो वो जन होता है, वो राय होती है। तो फरमाया कि तुम बहुत ज़्यादा बचा करो गुमानों से, क्योंकि बाज़ गुमान हक तलफी की तरफ ले जाते हैं। ये फितरी सी बात है कि जब मैंने अपने भाई के बारे में वो अपनी दुखड़ा सुना रहा था, मैंने उसको अपने दिल में ख्याल किया कि ये तो इस चक्कर में है, तो अब क्या होगा? वो वाकई अगर वो बेचारा मजबूर है तो मैं उसकी मदद से इनकार कर दूंगा, क्योंकि अब मैंने अपने गुमान के ऊपर मेरे जहन में जो ख्याल आ गया है उसके मुताबिक मैंने उसको सोचना है कि नहीं ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, ये तो अपने मतलब के लिए आया है, तो मैं अब उसकी बात नहीं सुनूंगा, उसके साथ हमदर्दी ख़त्म हो जाएगी। तो जितने गुमान हैं कायनात के बारे में आप गुमान पैदा कर लें, जैसे मैंने अभी चंद मिसालें दी, तो आप खुदा का इनकार कर देंगे, खुदा का इनकार कर देंगे तो गुमान गुनाह की शक्ल इख्तियार कर गया। तो गुमान आरा जितनी भी हैं वो अगर ऑथेंटिक डाटा के ऊपर बेस नहीं करते और वो सिर्फ आपकी इंटरप्रटेशन नहीं है तो फिर वो दुरुस्त है, अदरवाइज वो जन है। तो इन नबाज़ जन इस्म, तो बहुत सारे जन, कुछ जन कह लीजिए, कुछ जन जो हैं वो गुनाह होते हैं। वला तजस्सु वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और चुनाचे जुनून की वजह से ही हम चुगलियाँ करते हैं, गुमानों ही बदगुमानियों की वजह से हम चुगलियाँ करते हैं और गीबतें करते फिरते हैं, और गुमानों ही की वजह से हम टोह में रहते हैं, ऐसी बातें कुरेद कुरेद कर पूछेंगे कि हमारे जन को तस्कीन हो जाए, और फिर कोई और बात आ जाती है फिर कहते हैं हाँ देखा ना मैंने कहा था ये ऐसा हुआ था। तो ये सारा कुछ तो मोमिन का काम। अब यहाँ दो जन करने की जगह दो हैं, मैं उसको तीन में तब्दील कर देता हूँ ताकि बात ज़्यादा वाजे हो जाए। लोगों के बारे में बदगुमानी करना नाजायज़ किया जा रहा, खुदा के बारे में कुरान मजीद ने इसको बकायदा ज़ेर बहस भी लाया है कि खुदा के बारे में जाहिलियत वाले जन ना इख्तियार किया करो, कायनात के बारे में कि कायनात कैसे बनी है, कहाँ जा रही है, कहाँ पहुँचेगी, ये सिर्फ वही बता सकता है जिसने इसको बनाया है। ये बहस तो हो सकती है कि हमारे पास जो कुरान मजीद है ये अल्लाह की किताब है या नहीं है, लेकिन ये बहस नहीं हो सकती कि खुदा नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास सबूत होने चाहिए। खुदा के मानने के सबूत जितने मौजूद हैं, खुदा के इनकार करने का कोई सबूत मौजूद नहीं है, कोई मौजूद नहीं है। जितनी आरा हैं, मेरा जितना नाकिस मुताला है इल्हाद के लिटरेचर का, उससे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोई सबूत नहीं है। सिर्फ चीज़ों को एक दूसरे एंगल से देखा जा रहा है। खुदा ने कायनात जिस तरह से बनाई है उस तरह से उसको नहीं देखा जा रहा। तो इसलिए कुछ सवालात हैं, वो सवालात हल नहीं होंगे। मसलन मैं अपने घर को मैं आपको अपने ड्राइंग रूम में लेकर जाऊं और आप डॉक्टर हों, तो आप कहेंगे कि तुमने क्या बनाया हुआ है, ना तुम्हारा कोई ऑपरेशन थिएटर यहाँ पड़ा हुआ है, ना यहाँ पर कोई आलात पड़े हुए हैं, तुमने क्या चीज़ बनाई है, पैसा ज़ाया कर दिया है, सोफ़ा यहाँ रख के तुमने पैसा खरीद, इतना पैसा ज़ाया कर दिया सोफ़ा ख़रीद के। तो मैंने ड्राइंग रूम बनाया था, आपका ऑपरेशन थिएटर नहीं बनाया था। अब इस डॉक्टर साहब के लिए मेरा ड्राइंग रूम की कोई चीज़ फहम के अंदर नहीं आएगी, वो मेरा मजाक ही उड़ाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो उसको ड्राइंग रूम के तौर पर देखेंगे तो सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो इस तरह से कायनात को जिस तरह से जिस मकसद के लिए खुदा ने बनाया है उस मकसद से देखना होगा, वगरना कोई जवाब नहीं है। टामक टोइयां मारेंगे जिसको कुरान ने इल्ला यखरसून इस आयत में कहा है। तो फरमाया कि बहुत सारे गुमानों से बचो, क्योंकि गुमान जो हैं वो सत्यानाश कर देते हैं। तो कायनात के बारे में गुमान कि कायनात कैसे बनी है, क्यों बनी है, किस लिए बनी है, ये किसी इंसान के बस का नहीं है। हाँ, वो कुछ बात समझ आ सकती है जो हम उसको समझाएंगे। और दूसरी बात ये कि लोगों के बारे में गुमान कि ये यूं कर रहा है, ये इस वजह से, जब तक सबूत ना हो किसी शख्स के बारे में कोई राय कायम नहीं की जा सकती, वगरना आप जाहिल हैं। और कायनात के बारे में भी आप बगैर किसी सबूत के अपने हाइपोथेसिस पर राय कायम कर देंगे तो आप जाहिल हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा डाटा मौजूद नहीं है। हमने पूरी कायनात को क्या एक छोटे से हिस्से को भी अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया। हम तो अपने पूरे सोलर सिस्टम का मुताला नहीं कर सके हैं कि ये कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। बस उसकी बुनियाद पर हम इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं है। और तीसरा खुदा के बारे में गुमान, जो इन तीनों के बारे में गुमान करता है, सिर्फ अपनी स्पेकुलेशन पर अपनी राय रखता है, वो कुरान के अल्फाज के मुताबिक जाहिलियत में जीता है। وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ۔ اب چوتھی چیز آ رہی ہے، تین چیزیں خدا، کائنات، انسان، اب چوتھی چیز دین آ رہی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ امیوں جیسے ہیں، ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الكتاب الا امانیا، اور یہ شریعت کو اپنی تمناؤں کی ایک جمگٹا سمجھتے ہیں، تمناؤں کی براری کے لیے ایک طریقہ کار سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پاکستان کے لوگوں کو دیکھیں، ہم اکثریت میں مذہبی ہیں، لیکن سب نے اپنی اپنی تمناؤں کو، اپنے اپنے خیالات کو، اپنے اپنے تصورات کو دین بنایا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے بعض لوگوں کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے، کہتے نہیں ہے خدا لیکن درجہ وہی ہے۔ کچھ لوگوں نے رسوم ایسے بنا لیے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے عبادت کے ایسے طریقے بنا لیے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے تہوار ایسے بنا لیے ہوئے ہیں جو خدا نے حرام کر رکھے ہیں یا مقرر نہیں کیے ہیں۔ تو ہم اپنی تمناؤں کے لیے، آپ دیکھیے کہ ایک بڑا جو عنصر آپ کو نظر آئے گا پورے پاکستان میں، وہ یہ کہ نماز پڑھنی ہے رزق کھولنے کے لیے، وہ جی سچ بولنا ہے، جی آج روزے رکھ لو جی تاکہ ہم رزق اللہ تعالیٰ کی ناراضی دور ہو جائے اور رزق کھل جائے یا اولاد ہو جائے یا یہ ہو جائے۔ ہماری مائیں بچپن میں یہ کہتی تھی، وہ امتحان آ گئے ہیں، چلو نماز پڑھو، چل کے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز میری تمنا کا مظہر ہے، نہ کہ میں خدا کو راضی کرنے کے لیے یا جس مقصد کے لیے خدا نے نماز مقرر کی اس لیے نہیں پڑھتا، بلکہ اپنی تمناؤں کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو پاکستان میں اکثریت کا دین تمناؤں کا دین ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں جانچا کہ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، نہیں، بس جو سنا سنایا چلا رہا ہے، جس پہ مال فینا آبانا، اپنے ماں باپ کو پایا ہے، اسی پر چلتے آ رہے ہیں، اور وہ تمنائیں ہیں میرے، مجھے لگتا ہے کہ ایسا اچھا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر آپ صرف تصوفی کو دیکھیں تو تصوف صوفی، مجھے یوں اچھا لگتا ہے، میرے خیال میں یوں ہے، मुझे ही लगता है कि ऐसा है, मेरा ख्याल है कि खुदा ऐसा है, मेरा ख्याल है कि खुदा ऐसे हासिल हो जाएगा, मेरा ख्याल है कि मुराकबों से खुदा मिलता है, मेरा ख्याल है कि खुदा इस तरह से मिलता है। इनकी कोई हकीकत नहीं है। कुरान ने कह दिया है कि जन जो है वो हक के मुकाबले में काम नहीं आता। तो खुदा कैसे मिलता है? जैसे खुदा बताता है। दीन किसको कहते हैं? जो कुरान और सुन्नत में है, बाहर कहीं नहीं है। बाहर अगर कुछ है तो मेरी तमन्नाएं हैं, मेरे फलसफे हैं, मेरे तसव्वुरात हैं। तो खालिस दीन कहाँ से मिलना है? वो सिर्फ अल्लाह दे सकता है, और कहीं से नहीं मिलना। तो दीन में भी हम गुमान ले आते हैं, दीन में भी हम अपनी स्पेकुलेशंस ले आते हैं, दीन में भी हम अपनी आरा को ले आते हैं। तो अब चार चीज़ें हो गई हैं। अल्लाह ताला उसके बारे में गुमान नहीं करने चाहिए कि वो कैसा है कैसा नहीं है। जैसा वो है कुरान मजीद बताएगा या अल्लाह की दीगर किताबें जो सच्ची साबित हैं। दूसरा, कायनात के बारे में गुमानों पे बात नहीं करनी चाहिए कि इसकी हकीकत क्या है, क्यों बनाई गई है, किस लिए बनी है। तीसरा, लोगों के बारे में बदगुमानी नहीं होनी चाहिए, उनके बारे में गुमान पर बात नहीं होनी चाहिए, साबितशुदा बात के ऊपर आपका रवैया, आपका अमल उनके साथ होना चाहिए। चौथी चीज़ दीन है। दीन को भी बस वहीं से लेना है जहाँ यकीनी तौर पर वो पाया जाता है, वगरना काम ख़राब हो जाएगा। तो या यो लजीन आमन इंजा कुम फासिकुन बिना बैन। अब जो खबरें हैं, पाँचवीं चीज़ आ गई है। अगर हम इन पाँचों में अपनी स्पेकुलेशंस पर रहेंगे, अपने गुमानों पर रहेंगे, तो हम जाहिल हैं। फरमाए या यो लजीन आमन इंजा कुम फासिकुन बिना बैन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई शरारती आदमी कोई खबर लेकर आए, फतबैयनू, तो उसकी तहकीक कर लिया करो। अब जो खबरें आ रही होती हैं, कहानियां सुनाई जा रही होती हैं, बातें बताई जा रही होती हैं कौमों के बारे में, लोगों के बारे में, लीडर्स के बारे में, अपने हमसायों के बारे में, अपने अजीज़ों के बारे में, सबके दीन के बारे में, कोई आकर कहे कि मुझे ये पता चला है, ये हदीस है, ये कुरान की आयत है, तो तहकीक करके माने। हाँ, जो स्कॉलर बन के बैठे होते हैं उन पर आप एतबार कर सकते हैं, लेकिन उनसे भी पूछ लें जी कहाँ पर है। हर आलम दीन को जिम्मेदारी है कि वो बताए कि मैंने ये बात कहाँ से अखज़ की है, कि कुरान की फ़लाँ आयत से ली है, फ़लाँ सुन्नत है, फ़लाँ हदीस है, कम अज़ कम इतना उसको लाजमन बताना चाहिए। तो दीन के बारे में मामला हो, खुदा के बारे में हो, लोगों के बारे में हो, जिसकी भी खबर आए फ़ौरन नहीं माननी। चुनाचे हमारे मुहद्दिसीन ने हदीस इसी असूल पर इकट्ठी की, तो उनको लोग मजाक उड़ाते, तुम क्या रावियों की चुगलियाँ करते रहते हो, वो सच्चा रावी है, वो झूठा है, वो मजहूल है, वो फलां है, वो फलां है। तो कहते हैं कि हमें कुरान ने हुक्म दिया है कि हम रावियों की तहकीक करेंगे, जो रिपोर्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हमें भी अपने इर्द गिर्द, ज़रूरी नहीं कि हम उसको झूठा करार दें जो खबर लेकर आ गया है, लेकिन हम तहकीक किए बगैर उस पर मदार ना रखें। तो कुरान कहता है कि तुम तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि तुम कौम पर, उन लोगों पर जाके मामला कर दो, भाई ने आकर बताया कि तुम्हारे बड़े भाई ने ये बात कही है, और मैंने जनाब लंगोट कस के वो चला गया और उसको पकड़ लिया कि तुम मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हो। वो आगे से कहे मैंने तो कही नहीं। तो अब फरमाया कि अंतसीब कौमन, कि तुम लोगों पर जा पड़ो बे जहालतिन, इसी जहालत में कि तहकीक नहीं की, फतुस्बहु अला मा फअलतुम नादमीन, और बाद में पछताना पड़े। तो ये मोमिन जाहिल नहीं होता, मोमिन तहकीक शुदा बात पर रहता है, लेकिन पाकिस्तान में हमारी अक्सरियत इसका ध्यान नहीं रखती, वो सुनी सुनाई बातों पर अमल करती है। अब छठी चीज़ आ रही है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हज़रत नूह अपने बेटे के बारे में, जो ईमान नहीं लाया, तो उसके बारे में दुआ कर रहा है कि अल्लाह ये मेरे अहल में से है, इसको बचा ले, क्योंकि अल्लाह ने वादा कर रखा था कि तुम्हारे अहल को बचाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो तुम्हारे अहल में से नहीं है, तो तुम ऐसी चीज़ ना मांगो मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि दुआ में भी वो चीज ना मांगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। इन्नी आयजु का अंतकून मिनल जाहिलीन, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि कहीं जज्बाती ना बन जाना। तो जज्बात में बेटे की मोहब्बत हजरत नूह को मजबूर कर रही है कि वो खुदा से मांगे कि या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। अल्लाह ताला कह रहे हैं वो तुम्हारे अहल में से नहीं, तो तुम एक ऐसी चीज़ मांग रहे हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो जब इल्म नहीं होता और आदमी मांग रहा होता है तो क्या होता है, वो जज्बात का शिकार होता है। तो बाज़ुकात कुछ दुआएं हम ऐसी करते हैं जो अल्लाह की मीज़ान में हमारे लिए सूदमंद नहीं होती, अल्लाह के इल्म के मुताबिक, अल्लाह की हिकमत के मुताबिक वो ठीक नहीं होती। तो हमें दुआ करते रहना चाहिए, लेकिन जाहिल नहीं बनना चाहिए। जाहिल बनने का मतलब यह है कि अब खुदा का इनकार कर दिया जाए, गुमान गलत किस्म के अल्लाह के बारे में कायम कर लिए जाएँ। अल्लाह ताला बाज़ दुआएँ कबूल करते हैं, बाज़ नहीं करते, बाज़ को टाल देते हैं क़यामत तक के लिए, बाज़ को कुछ अरसे के लिए, और बाज़ दुआएँ ऐसी होती हैं जो आदमी के मरने के बाद पूरी हो जाती, लेकिन हो जाती हैं। तो ये सारा कुछ इस कायनात में खुदा के इल्म के ऊपर खड़ा होता है, जबकि हमें उसका इल्म नहीं होता। आगे फरमाए वाइज़ा सामेउल लघवा आरजू अनहु, जब वो कोई लघव बात सुनते हैं। लघव बात का मतलब ये होता है कि जो बेमानी है, बेफायदा है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, फजूल किस्म की बात है, जिसका कोई सबूत नहीं है, ये सारे पहलू इसके अंदर होते हैं। तो वो उससे मुंह फेर लेते हैं कि नहीं नहीं हम इस तरह की बातें नहीं करते। कालू, अब ये जो कालू है ये उनके रवैया है, लना आमालुना वला कुमार, वो दिल में कहते हैं कि भाई तुम इन चीज़ों में पड़े रहते हो, मैं तो इसमें नहीं पड़ता। ये मोमिन है, मोमिन क्या कह रहा है कि ये लघ बातें जो लोगों के बारे में हो रही हैं, जो बेसबूत बातें हो रही हैं, जो फजूल बातें हो रही हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बातें हो रही हैं, तो मेरा तरीका ये नहीं है कि मैं इन चीज़ों में पढ़ूँ। ये दिल में वो कह रहा है, सलामुन अलैकुम, खुदा हाफिज़, मैं चलता हूँ, ला नबतगिल जाहिलीन, हम मोमिन जाहिलों वाली बातों में नहीं पढ़ते, जाहिलों के दर पे नहीं होते, यानी उनके साथ। तो वक्त का ज़ाया करना, लघ बातें जो हैं वक्त ज़ाया करने वाली, लोगों के ऊपर तान तशनी करने वाली, चुगली गीबत, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, लघ बातें, बुरी बातें, फजूल बातें, चुगली गीबत, ठट्ठा, बेफ़ायदा काम सारे के सारे जिसमें वक्त ज़ाया हो रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तफरी वगैरह से मना है, तफरी लघ नहीं होता, तफरी इंसान की ज़रूरत है, लेकिन एक हद तक उसको अपनाया जाता है, उससे जब आगे जाती है तो वो लघ के दायरे में आ सकती है। तो ये मोमिन है, मोमिन जाहिल नहीं होता। वो दीन का मसला हो तो बड़ी पक्की साबितशुदा बात पर खड़ा होता है, लोगों के साथ राय बनाने का, लोगों के बारे में मामला करने का मामला हो तो बड़े पक्के सबूत पर खड़ा होता है, वो खुदा के बारे में मामला हो, वो दीन के बारे में मामला हो, कायनात की पूरी तौजीह करनी हो, उसकी एक्सप्लेन करना हो कि ये कायनात क्या है, इन सारी चीज़ों में वो साबितशुदा हकायक पर खड़ा होता है, ख्यालों पर नहीं होता, वहमों पर नहीं होता, सुनी सुनाई बातों पर नहीं होता, कहानियों और दास्तानों पर नहीं होता। ये मोमिन है, इस मोमिन के होने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह करे कि हम इस रमज़ान में ये तज़किया कर सकें कि अपने सारे तर्ज़ अमल में तब्दीली कर लें, कि अब मैंने यकीनी बातों पर रहना है बस।